قرآن مجید میں قراءتوں کے اختلاف کے بارے میں جو روایت بالعموم موضوع بحث رہتی ہے اس کا ہم نے تجزیہ پچھلی نشست میں کیا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت نہ صرف یہ کہ اپنے متن کے لحاظ سے خلاف عقل ہے، قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بارے میں تاریخ کے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے، بلکہ زیادہ تر جن صاحب نے اسے روایت کیا ہے وہ بھی کوئی بڑی قابل اعتماد شخصیت نہیں. اس بحث کے آخر میں ہم نے امام لیث بن سعد کا وہ خط پڑھا ہے جس میں وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں اپنی آراء بیان کرتے تھے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ بہت صاحب علم و فضل آدمی تھے، لیکن ان کی آراء میں غیر معمولی تناقض ہوتا تھا. نہیں، اس میں یہ جملہ آپ نے سنا نہیں، سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساط. یہ جو جملہ ہے نا، یہ اصل میں سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان کے دوران میں جو قرآن کی جمع و تدمین کی روایتیں ہیں ان پر تبصرہ ہے. یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، ایک ہے قراءت کی روایت اور ایک ہے قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی کیسے تدوین کی گئی. اس میں بھی کچھ اور روایتیں موجود ہیں، لیکن اصلاً یہ ابن شہاب زہری سے. قراءت کی روایتوں کے بارے میں تو ہم بحث کر چکے اوپر اس کے بارے میں. یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے، یعنی قراءت کے بارے میں بھی اور قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں بھی. لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، یعنی اس وقت جو ہمارے مصاحف ہیں ان میں جو قراءت امت کے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی قراءت ہے. اس کے علاوہ اس کی جو قراءتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب اسی فتنہ عجم کے باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہا. یعنی ہمارے جو علوم و فنون ہیں اس پہ اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ بہت جلیل قدر لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کو روایت کیا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے. آج بھی ہم اگر روشنی میں کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بہت مستند ذرائع سے ملا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. ایک پورا کا پورا فتنہ رہا ہے جس نے مختلف زمانوں میں قرآن مجید کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، پھر حدیث کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، پھر تاریخ کے اندر بھی بہت سی چیزیں اسی کے نتیجے میں شامل ہوئی ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، لیکن بہرحال یعنی قرآن مجید بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا. فتنہ پیدا کرنے کی صحیح اپنی جگہ ہو گئی ہے، جس حد تک بھی ہونی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور ہمارے پاس وہ مصاحف میں جس طرح ثبت ہے اس میں کوئی در اندازی کرنے کی جسارت نہیں کی جا سکی. یعنی جو کچھ ہو سکا وہ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، جو کچھ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اس کو بھی مان لیجیے، کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مان لیجیے. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بالکل تواتر قولی سے امت کے اجماع سے موجود ہے، لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کر ڈالا گیا. جی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سرزمین عرب ہے جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اور سرزمین عرب میں صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو منتقل کیا ہے. بالعموم عرب کی سرزمین اس طرح کی فتنوں کی آماجگاہ نہیں رہی. جب ایران فتح ہوا ہے تو اس میں ایک بڑی سلطنت ختم ہوئی اور لوگ آسانی کے ساتھ صدیوں کی अजमत को हाथ से नहीं देते, हम भी नहीं देने के लिए तैयार। हमारे पास भी 1000 साल की अजमत की तारीख है, तो आसानी से तो दस्तबरदार नहीं होते ना उससे हम। तो अजम की भी हमने असल में सल्तनत ख़त्म कर दी, तहजीब ख़त्म कर दी, उनका तमद्दुन ख़त्म कर दिया। यानी सहाबा किराम ने जब अजम को फ़तह किया है तो एक पूरी दुनिया है जो तब्दील हो गई, तो उसका रद्द अमल हुआ है। और ज़्यादातर फिर ज़ुबान के बारे में, तारीख़ के मामले में और दूसरी और बहुत सी चीज़ों के बारे में यहीं से मुख्तलिफ तहरीकें उठी हैं, मुख्तलिफ फितने पैदा हुए हैं, इस वजह से इसमें अजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ज़रा सी बात थी, अंदेशाए अजम ने इसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो अंदेशाए अजम के अपने कारनामे तो हैं, उसकी खूबियाँ भी हैं। यानी अजम ने हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दुन में बाज़ चीज़ों का इजाफ़ा किया है, और मुसलमानों की तहजीब की असल रवायत अजमी से होकर आ रही है। लेकिन दीन के मामले में अंदेशाए अजम के बाज़ पहलू ऐसे हैं कि जिन पे इल्म व मुताले की रोशनी में गौर करना चाहिए। बस इतना इशारा यहाँ काफ़ी है, क्योंकि असल में तारीख मेरा मौजू नहीं यहाँ। यहाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि कुरान मजीद की जम व तदवीन के बारे में ये सब कैसे हुआ है। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इसमें मुस्तशरिकीन ने जो कुछ अब लिखा है और तनकीदें की हैं और कुरान मजीद के बारे में जो नुक्ता नज़र कायम किए हैं, उसमें इन्हीं रवायात को दखल है। और ख़ास तौर पर जो इब्ने अबी दाऊद की किताबुल मसाहिफ है, जो गपों का मजमूआ है, लेकिन बहरहाल एक किताब है तो गपों का मजमूआ। और उस किताब में हर तरह के अफसाने, हर तरह की कहानियाँ कुरान मजीद के बारे में मौजूद हैं। कुरान मजीद के नुस्खों के बारे में, कुरान मजीद की किरातों के बारे में जितनी दास्तानें हैं, अगर आप गौर करें तो उसका असल माखज़ यही किताब है। बाकी किताबों में भी है, तो उसको ज़ाहिर है कि वो बुनियाद बनाते हैं। हमारे यहाँ ये मुआद मौजूद है, उसको बुनियाद बना के बात करते हैं। इनकी पदा हो सकता है कि इर्ज़ा अखीरा से पहले की किरात पर बाज़ लोगों के इसरार और इसमें रावियों के सहव व निस्यानी से हुई हो। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ के लिए कोई बुनियाद ना हो और फितना पैदा कर दिया जाए। यानी कोई जगह होती है जहाँ से फिर फितने की पैदा कर दी जाती है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बात बिल्कुल अकली है, यानी ये बात समझ में आती है कि कुरान मजीद की जो पहली किरात जिसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था और जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो उस वक्त के हालात थे उनके लिहाज से थे। इसी को बयान किया ना सूरह आला की उस आयत में, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा। यानी एक तो इस वक्त की सूरत हाल है जिसको अल्लाह जानते हैं और उसके मुताबिक कुरान नाजिल कर रहे हैं, और एक वो सूरत हाल है जो बाद में पेश आने वाली है और जो बहरहाल तुम पर मख्फी है, उसके लिहाज से वो उसकी दोबारा किरात करेंगे। तो जो किरात उससे पहले की गई उसमें छोटी मोटी बात चीज़ें मुखातब के लिहाज से, मसलन ये है कि यालमून तालमून हो सकता है, तालमून यालमून हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जो चीज़ें लोगों ने अक्स की, सहाबा किराम से अक्स की या सहाबा किराम के बाद रवायत उसकी कायम हो गई, तो उस पर लोग इसरार कर सकते हैं। यानी ये बात मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अकली समझ में आती है, इब्तदा में ऐसा हो सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की चीज़ों के बारे में कहीं सहव व निस्यान हो गया और आदमी अपने सहव व निस्यान को कबूल करने के लिए तैयार ना हो, जम गया उसके ऊपर। यानी उस सहव व निस्यान को आकर करिया करिया गांव गांव दुरुस्त करने के अहतमाम तो बाद में होने शुरू हुए ना, वक्त लगा है उसमें। ये बात ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में उन्हीं मुहर्रकात के तहत जो वज़ हदीस का बायस हुए, यानी बाद में उन्हीं मुहर्रकात के तहत, आखिर हदीस के मामले में भी ये हुआ है कि बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने हदीसें गढ़ी, यानी सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में हदीसें गढ़ी, ऐसे ऐसे मौजूदात पर गढ़ी हैं कि आदमी हैरान रह जाता है कि आदमी ऐसा जरी भी हो सकता है। यानी बादशाहों के दरबार में बैठे हुए हैं और वहाँ बादशाह को खुश करने के लिए अगर कबूतरों की फजीलत पर हदीस बयान करनी है तो कर दी। यानी ये मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया आपको, मौजूद है इस तरह की रवायत, सुना दी। अच्छा, इसी तरीके से कोई अपना ख़ास नुक्ता नज़र कायम कर लिया है, उस ख़ास नुक्ता नज़र पर बहस व मुबासा शुरू हो गया है। बहस व मुबासे और मनाजरे की फितरत यह है कि आदमी के अंदर एक जीत और हार की नफसियात पैदा हो जाती है। उसमें एक रवायत सुना दी, यानी ज़ाहिर है कि मुखातब खामोश हो जाएगा ना, बता दिया कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ रावी ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने इस तरह फरमाया है, तो ये हो गया। बहुत से बाद में लोगों ने मुतकल्लिमाना मसालिक कायम किए, यानी तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में जो अकली दलाइल कायम किए गए उनकी बुनियाद पर अकायद की भी बाज़ तफरियात हुई, अकायद की बाज़ तफसीलात नई बयान की गई, उसमें भी अगर आप जायज़ा लें तो बहुत सी रवायतें वज़ा हुई हैं, गढ़ी गई हैं। इसी तरीके से जो फ़िरके बने, खा वो फ़िका की बुनियाद पर बने या किसी और बुनियाद पर बने, उनमें जब फ़िरकाबंदी का उनसर गलबा पा लेता है तो वहाँ भी ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि जो ये काम कर डालते हैं। अच्छा, बड़े नेक मुहर्रिकात के तहत भी इमाम मुस्लिम ने अपने ही सही के मुकदमे में बयान किया है कि सबसे ज़्यादा हदीस के मामले में जो लोग झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा, वो सालेहीन। सालेहीन से मुराद उनकी अपने ज़माने के सूफिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग झूठ बोलते हैं वो ये लोग। उसकी वजह यह है कि ये किसी बात की तरगीब के लिए, तरहीब के लिए हदीस वादा कर देते हैं बड़े इत्मीनान के साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अइम्मा रिजाल कहते हैं कि ये मस्जिद नबी के सतूनों के पास बैठे हुए हैं, इबादत में मसरूफ़ हैं, और कहते हैं कि ऐसी इबादत करते हैं कि ये ख्याल होता है कि दुआ करें तो सतून अपनी जगह से टल जाए, लेकिन हदीस के मामले में इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। कुछ खबर नहीं कब घड़ के बयान कर दें। तो अच्छे मुहर्रिकात के तहत मशहूर वाक्य है कि एक साहिब के बारे में बयान हुआ कि मालूम हुआ लोगों को कि तमाम जितनी रवायतें बयान की ना, ये इस सूरा को पढ़ें तो इससे ये हो जाएगा, उस सूरा को पढ़ें तो ये हो जाएगा, इस सूरा को पढ़ने की ये फजीलत है, उस सूरा को पढ़ने की ये फजीलत है। तो जब आइम्मा रिजाल ने तहकीक की और उन साहिब को पकड़ लिया, तो पकड़कर उनसे पूछा कि भाई ये क्या हरकत है, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि लोग कुरान मजीद ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा कि उनमें कुरान पढ़ने की रगबत पैदा करने के लिए ये रवायतें बयान की जाएँ। अच्छा, इस तरह के मामले में हमारे यहाँ अहले इल्म के तसाहुल का भी हाल ये है कि ज़मख़्शरी ज़ुबान व अदब के जलीलुल क़द्र इमाम में से हैं, उनकी तफसीर तफसीर की उम्महात कुतुब में शुमार होती है, इल्मी और फ़नी लिहाज से सब लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन जब वो बड़ी अच्छी तफसीर कर लेते हैं सूरा की तो आखिर में इसी तरह की रवायत बयान कर देते हैं। उनकी तफसीर आप उठा के देखें, जब खात्मे पर तफसीर पहुँचती है तो एक किसी तरह की अजीब व गरीब किस्म की रवायत होती है कि इस सूरा को पढ़ने के नतीजे में ये हो जाएगा, इसको पढ़ने के नतीजे में ये हो जाएगा, हालांकि ये मालूम है कि इस तरह की रवायतें बिल्कुल गलत रवायतें। इमाम गजाली को आप देखिए, यानी हुज्जतुल इस्लाम है, उनकी इल्मी अकली फजीलत के बारे में लोगों के अंदर दो राय नहीं है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ज़माने में यूनानी फ़लसफ़े के फितने के ख़िलाफ़ इस्लाम का बड़ा दिफा किया है, और कोई शुबा नहीं है कि बड़े आलिम हैं, बड़े जलील कदर इस्कॉलर हैं, बड़े आलिम हैं, उनकी एक बड़ी हैसियत है। उनके बारे में एक लतीफ़ा लोग सुनाते हैं, इससे अंदाज़ा किया जाता है कि मुसलमान उनको क्या हैसियत देते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो पहले समझ लीजिए कि ये लतीफ़ा है, यानी इससे सिर्फ मुसलमानों का जहन मालूम होता है। तो मेराज की रात गए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप ये मुझे बताइए कि ये आपने ये क्यों कहा है कि मेरी उम्मत के उलमात बनी इसराइल के अम्बिया की तरह है, हालांकि ये रवायत भी बिल्कुल झूठी रवायत है, यानी इस रवायत की कोई हैसियत नहीं। ये जो रवायत है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह है, ये रवायत भी कोई साबितशुदा रवायत नहीं है। बहरहाल उस किस्से में ये रवायत भी बयान होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा है ये, तो उन्होंने कहा कि आप किसी आदमी को पेश कर सकते हैं, तो पूरी उम्मत में से जिस शख्स का इंतखाब किया गया वो इमाम गजाली, यानी हज़रत मूसा के साथ मामला करने के लिए। और फिर मामला भी उन्होंने जो किया उसके भी क्या कहने हैं, कहते हैं कि हज़रत मूसा ने उनसे पूछा कि आपका इसमें गिरामी, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मोहम्मद बिन अहमद बिन हामिद, यानी पूरी अपनी शजरा नसब बयान कर दिया उन्होंने कोई 10-12। उन्होंने कहा कि भाई मैंने नाम पूछा है, आप बता के खामोश रहे। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपसे इतना ही पूछा था ना, ये आपके हाथ में क्या है, तो उसका जो जवाब आपने दिया था वो इतना तो नहीं था कि हाथ में ऐसा है, आपने भी पूरी दास्तान सुनाई थी कि ये मेरा ऐसा है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, तो जब आपने इतना लंबा जवाब दिया तो मेरा भी सुन लीजिए। तो ज़ाहिर है मूसा इसके जवाब में खामोशी हो गए होंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि वो इतने जलील कदर आदमी, उनकी किताब इहयाउ उलूमिद दीन के बारे में हमारे यहाँ ये कहा जाता रहा है कि अगर सारी किताबें दीनी उलूम की दुनिया से ख़त्म हो जाए और इहया बाकी रह जाए तो कोई अंदेशा नहीं, ये उनकी हैसियत। लेकिन हर झूठी रवायत जो आपको कहीं ना मिले वह हया में मिल जाएगी, कभी आप तजर्बा करके देख लें। यानी अगर कोई झूठी और मौजू रवायत आप तलाश करना चाहें कि ये कहाँ से आई है, और आप अहया खोल लें तो आपको मिल जाएगी। यानी उस मामले में इतने तसाहुल, कोई दिलचस्पी नहीं इससे, बेतकल्लुफ ऐसी रवायात जो बिल्कुल मौजू रवायात हैं, जिनके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो घड़ी हुई हैं, जिन पर तहकीक हो चुकी है, लेकिन उसको बयान कर देते हैं, इत्मीनान के साथ बयान कर देते हैं। एक बाब बांधते हैं, उसमें चूंकि उनको तमाम चीज़ें लानी होती हैं तो वो ले आते हैं। बहुत वसी वाली इतला बुजुर्ग हमारे,
लेकिन वो उसमें बताते हैं कि ये ठीक नहीं है।
हाँ, मौजूदा ज़माने में लोगों ने इसमें ये मोहतात तरीका इख्तियार किया। मसलन आप तबलीगी जमात उठाइए, निसाब उठाइए ना, उसमें एक इंतहाई झूठा किस्सा उसमें लिखा होगा रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ नस्बत देकर, और आगे उर्दू में तो किस्सा होगा, अरबी में आगे लिखा होगा कि ये रवायत मौजू है, मौजू है लिखा होता, घड़ी हुई अरबी में लिखा होता कि ये रवायत मौजू है, यानी ये आगे अरबी में लिखा हुआ होता है। ऐसी दसियों मिसालें दी जा सकती हैं। अच्छा, ज़ईफ़ तो खैर अक्सर है ना, यानी ज़ईफ़ रवायत तो अक्सर बयान होती है और उसमें लिख देते हैं। अच्छा, जो आदमी ज़ाहिर है कि अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है, वो तो उर्दू में किस्सा पड़ेगा और कहेगा कि वाह वाह क्या कहने, ईमान ताज़ा हो गया। और मैंने तो अब तक ये तजर्बा किया कि ईमान सिर्फ झूठी बातों से ताज़ा होता है, यानी अब तक का मेरा तजर्बा ये है कि ईमान ताज़ा करने के लिए या झूठी रवायत गढ़नी पड़ती है, या कोई किस्सा बयान करना पड़ता है, या कोई कहानी सुनानी पड़ती है, इसके बगैर ईमान ताज़ा नहीं होता। यानी दीन अपनी असल और सही सूरत में जब बयान किया जाए तो मालूम होता है कि कोई बात बनी नहीं, रंगीनी नहीं पैदा हुई। तसाहुल, कोई इंटेंशन नहीं, तसाहुल है। यानी ये मिसाल के तौर पर नुक्ता नज़र कायम कर लिया गया कि अहकाम के मामले में तो हम बहुत तहकीक कर लेंगे, लेकिन ये कि फ़ज़ाइल की रवायतें जो हैं इनके मामले में इतनी तहकीक की क्या ज़रूरत है। हालांकि वो जो फ़ज़ाइल हैं उन्हीं के अंदर से दीन के बारे में बाज़ बुनियादी मुकदमात कायम हो जाते हैं, लेकिन ये अमूमी रवैया हमारे यहाँ इख्तियार किया गया।
क्या उन्हें इदराक नहीं था कि इससे और प्रॉब्लम हो जाएंगी?
ये तो उनसे मुलाकात होगी, पूछेंगे। मैं बुज़ुर्गों पर कोई तबसरा नहीं करता, मैं सिर्फ हकायक आपके सामने बयान कर रहा हूँ। यानी इस मामले में जो नुक्ता है नज़र रहे हैं, मैंने मौजूदा ज़माने के बहुत जलील कदर आलिम हैं, उनके आलिम होने में कोई शुबा नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरा मकतब फ़िक्र उनकी तरफ अपने आप को मंसूब करता है, उनको इस दौर का मुजद्दिद वो कहते हैं, यानी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी। उनकी किताबों में ये जो मशहूर रवायत है कि मेरी जो मेरा नूर से दुनिया बनी है, मशहूर रवायत है ना, ये आम तौर पर लोगों से आपने सुनी होगी, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो उस रवायत से ज़ाहिर है कि उन्होंने इस्तदलाल किया है, उनके मलफूजात में और भी जगहों पर ज़ेर बहस लाए हैं, उससे इस्तदलाल किया, और उसके बाद ये कहा है कि भाई बात यह है कि इस रवायत पर लोग क्यों एतराज़ करते हैं, मुसलमानों की बहुत सी किताबों में लिखी हुई है, और कोई मुसलमान अपने पैगंबर की तरफ गलत बात मंसूब कैसे कर सकता है। अगर ये नुक्ता नज़र है तो आप ये देखिए ना कि इसके नतीजे में तो फिर सारा फन हदीस ख़त्म हो जाता है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हैं जिन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर रवायतें घड़ी हैं, उनको बयान किया है, पेश किया है। तो आप अगर देखेंगे हदीस का फ़न, आप आएगा ज़ेर बहस जब हम वो बाब पढ़ेंगे मबादी तदब्बुर हदीस का, तो मैं आपको हदीस की तारीख़ और उसके फ़न के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो फिर मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं जो लोगों ने घड़ी, और हमारे जलील कदर उलमा जो हैं, रिजाल के अइम्मा हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनका कितना अजीम कारनामा है कि उन्होंने इस सारे झाड़ झंकार से निजात दिलाई और बहुत बड़े पैमाने पर तहकीक करके। अब ज़ाहिर है इंसान है, गलती भी हो जाती है, लेकिन बड़ा अजीम एहसान उनका यह हुआ। वरना यह है कि इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की चीज़ें नकल कर रहे थे तो मालूम नहीं क्या क्या कुछ उम्मत में फैल जाता। फैल गया इसके बावजूद भी, लेकिन उसकी तरदीद करना, उसकी गलती वाजे करना, ये आसान हो गया है हमारे लिए। तो इस वजह से ये मैंने लिखा है कि लेकिन बाद में उन्हीं मुहर्रकात के तहत, ये मैंने चंद मुहर्रकात का जिक्र किया। अगर आप इन मुहर्रकात के बारे में भी, यानी वो क्या मुहर्रकात होते हैं जिनकी बुनियाद पर लोग हदीसें गढ़ते थे, इनका आप ज़रा तफसीली मुताला करना चाहें तो उस्ताद इमाम की जो किताब मबादी तदब्बुर हदीस के उनवान से छपी हुई है, वो अगरचि उनकी किताब नहीं है, बाकायदा उनके लेक्चर्स हैं जिनको बाद में लोगों ने तरतीब दिया है, तो उसमें एक पूरा बाब है जिसमें उन्होंने वज़ हदीस के मुहर्रकात बयान किए। तो आप उसको पढ़ेंगे तो उससे बहुत बसीरत हासिल होगी, यानी मालूम होगा कि वो क्या क्या असबाब हुए हैं। उसमें अच्छे असबाब भी हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि लोगों के अंदर कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा करना बजाय ख़ुद तो एक अच्छा पहलू है, लेकिन उसका ये कौन सा तरीका है कि आप उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बातें मंसूब करके लोगों में ये चीज़ पैदा करें। ये भी पैदा कर दिया लोगों ने, लेकिन बाद में उन्हीं मुहर्रकात के तहत जो वज़ हदीस का बायस हुए, इन किरातों के फ़रोग का ये आलम हुआ। यानी ये किरातें किस तरह फ़रोग पा गईं और कितने बड़े पैमाने पर फ़रोग पा गईं। कुरान मजीद एक तो वह मुसहफ में है ना जो हमारे पास है, इसके अलावा जो उसकी किरातें बयान की जाती हैं कि बनू उमैया की हुकूमत के इख्तिताम तक ये दसियों की तादाद में मंजरे आम पर आ चुकी। ये जो आप लोग आजकल सुनते हैं ना सात किरातें, ये कोई चीज़ नहीं है, मैं ये बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, दसियों की तादाद में। यानी बाज़ जगहों पर मैंने ये देखा है कि लोग 200-300 तक तादाद पहुंचा देते हैं, बयान करते हैं, बेशुमार कराते हैं बनु उमैया के आखिरी ज़माने तक। बनु उमैया के आखिरी ज़माने का मतलब है कि कमोबेश एक सदी के खात्मे तक ये वजूद में आ चुकी थी। बयान किया जाता है कि अबू उबैद कासिम बिन सलाम ने, जिनकी वफ़ात 224 हिजरी में हुई है, 224 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, इन किरातों में से जो फैली हुई थी लोगों के अंदर। तो अब ज़ाहिर है जमा तदवीन और इल्मी चीज़ों को एक जगह मरतब करने का ज़ौक मुसलमानों में पैदा हुआ और वो काम कर रहे थे। तो ये जो साहिब अबू उबैद कासिम बिन सलाम, इन्होंने 224 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, इनमें से 25 का इंतखाब अपनी किताब में किया था। ये किताब इस वक्त हमें मैसर नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़िक्र होता है और लोग बयान करते हैं किरात के फ़न पर जो किताबें हैं उनमें इसका बहुत ज़िक्र होता है। तो इन्होंने 25 मुंतखब की थी, यानी बहुत सी फैली हुई में से उन्होंने 25 मुंतखब कर दी। इस वक्त जो सात किरातें मशहूर हैं, ये सुनते हैं ना आप, सात किरातें हैं इस वक्त जो मशहूर हैं, ये अबू बकर बिन मुजाहिद ने तीसरी सदी के आखिर में किसी वक्त मुंतखब की। यानी ये अबू बकर बिन मुजाहिद जो हैं, ये भी एक मुअल्लिफ मुहक्किक है, मुसन्निफ़ है, इन्होंने एक किताब मरतब की, इन्होंने उन 25 में से सात का इंतखाब किया कि ये उनके ख्याल में ज़्यादा फैली हुई थी या ज़्यादा काबिल एतमाद थी। तो ये बल्कि इनके इस सात का इंतखाब करने के बाद, अब जो सवाल इन्होंने किया था, इनके इस सात का इंतखाब करने के बाद लोगों में ये ख्याल पैदा हुआ कि वो जो रिवायत में सात हरफों पर कुरान उतरा है वो असल में ये। हालांकि यह बात पर वाजे हो गया कि ये जो साथ है ये तो एक साहिब की ईजाद है। ईजाद से मुराद ये कि जो कुछ फैला हुआ था उसमें से 25-30 तो पहले एक साहिब ने मुंतखब कर दी, उन्होंने उनमें से सात का इंतखाब कर दिया। तो इन सात की हकीकत ये है, यानी ऐसा नहीं कि इन सात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नस्बत है और बाकियों के नहीं है, ये दसियों की तादाद है, बेशुमार है आप अगर उनको देखें। तो अबू बकर मुजाहिद ने तीसरी सदी के आखिर में, सही सन तो मालूम नहीं है लेकिन तीसरी सदी के आखिर में किसी वक्त उन्होंने मरतब करके ये सात किरातें राइज कर दी, और उन्हीं के बाद ये सात का ज़्यादा रिवाज हुआ है, यानी तीसरी सदी के आखिर में। लिहाजा ये बात आम तौर पर मानी जाती है, यानी अहले इल्म इसको मानते हैं कि इनकी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं की जा सकती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये किरातें जो हैं ये सात हैं या दस हैं या 25 हैं या 100 हैं। 25 भी इंतखाब है, सात भी एक दूसरे साहिब का इंतखाब है, असल में कितनी है कुछ नहीं कहा जाता, सैकड़ों। यानी इस वक्त भी अगर किताबों को आप निकालें तो उसमें आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जब सैकड़ों हैं तो फिर उसके बाद एक राय कायम की गई, वो राय जो है वो ये है, बल्कि हर वो किरात, यानी अब सवाल पैदा हुआ कि भाई इतनी ज़्यादा है, सैकड़ों की तादाद में फैली हुई हैं, तो किसी किरात को कुरान करार देने के लिए कोई मेयार, कोई क्राइटेरियन बनाएंगे ना, अगर आप किरातों को मानते हैं तो फिर उसके बाद कोई मेयार बनाएंगे, क्या सारी ठीक है। तो उन्होंने जो मेयार बनाया है अहले इल्म ने, वो मैंने यहाँ बयान कर दी है। वो कहते हैं कि हर वो किरात कुरान है, नंबर एक, जिसकी सनद सही हो। सनद सही होने का मतलब, यानी खबर वाहिदी होगी लेकिन सनद उसकी सही है, जैसे कि हदीस की सनद होती है। पहली शर्त ये, जो मसाहिफ उस्मानी से इहतमालन ही सही मुआफ़क़त रखती हो, यानी जो हमारे पास मुसहफ उस्मानी के नुस्खे हैं उनमें उसको पढ़ा जा सके। मिसाल के तौर पर अगर काफ ते लाम लिखा हुआ है तो ये मैंने अर्ज़ किया था ना, ये कातला भी पढ़ा जा सकता है, कोतला भी पढ़ा जा सकता है, ये पढ़ी जा सके उसमें, ये मतलब है इसका। इहतमालन ही सही मुआफ़क़त रखती है, यानी उसको वहाँ डाल के पढ़ना मुमकिन हो, और किसी ना किसी पहलू से अरबियत के मुताबिक करार दी जा सके। यानी कोई बेशक शाज उसलूब हो, कुछ हो, ये बताया जा सके कि अरबी ज़ुबान का जुमला बन गया है। अगर ये तीन चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उस किरात को मान लिया जाता है, यानी फिर वो किरात लिखी जा सकती है, फिर उस पर कुरान की तफसीर हो सकती है, फिर उसके बाद वो नमाज में पढ़ी जा सकती है। आप पढ़ दें, ये बनाया गया। इनमें से बाज़ को लोग, यानी ये अब सैकड़ों हैं, उसके लिए मेयार ये बनाया गया कि ये तीन चीज़ें हम देखेंगे। एक ये चीज़ देखेंगे कि सनद ठीक है, दूसरे ये कि मुसहफ़ उस्मानी का मतन उसको कबूल कर लेता है, यानी मतन में उसको पढ़ा जा सकता है। अरबियत के लिहाज से उसको गलत नहीं करार दिया जा सकता, ख्वाह वो अरबियत का कोई शाज उसलूब हो या और कोई चीज़ हो, उससे किसी ना किसी तरह उसकी मुताबिकत हो जाती है। इनमें से बाज़ को लोग मुतवातिर कहते हैं, दरा हाले कि इनकी जो सनदें किताबों में मौजूद हैं, यानी ये भी कहा जाता है आम जुबानों पे ये बात चढ़ी होती है कि ये मुतवातिर किराते हैं, तो ज़ाहिर है कुरान मुतवातिर है, तो आदमी ख्याल करता है कि जब कुरान मुतवातिर है और उसके मुकाबले में ये किरातें भी मुतवातिर हैं, तो फिर उनको रद्द करने की क्या वजह है। कुरान मजीद तो तवातुर कौली के साथ नकल हुआ है, उसका मतन हमारे पास तवातुर से नकल हो रहा है, कुरान मजीद पे उम्मत का इजमा है, तो इनको भी अगर तवातुर हासिल है तो बाद लोग इनको मुतवातिर कहते हैं। दरा हाले कि इनकी जो सनदें किताबों में मौजूद हैं उन्हें देखने के बाद इस बात में कोई शुबा बाकी नहीं रहता कि ये महज आहाद, यानी इनको अगर कोई मुतवातिर कहना चाहता है तो उसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये बयान किया जाता है कि नाफे की किरात है तो उसकी सनद बयान हो गई, वो सनद तो खबर वाहिद है जैसे कि हदीस की सनद होती है, लेकिन नाफे के बाद अगर हज़ारों लोगों ने मिसाल के तौर पर उनसे उसको सीखा है या पढ़ा है तो मुतवातिर हो गई। इस लिहाज से बुखारी भी मुतवातिर है, इस लिहाज से मुस्लिम भी मुतवातिर है। अगर तवातुर का लफ्ज़ इस पर बोलना है, तवातुर का मतलब होता है यानी यहाँ से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरे तसलसल के साथ तवातुर भी हो और इजमा भी हो, तो ये मुतवातिर का लफ्ज़ भी इस बारे में बोला जाता है, ये बहस लूज लफ्ज़ है, यानी इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसको बोलना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसकी सनदें मौजूद हैं और वो सनदें आहाद हैं जी। हदीस जब ज़ेरे बहस आएगी तो हदीस को ज़ेरे बहस लाएंगे, अभी तो कुरान ज़ेरे बहस। इनमें से बाज़ को लोग मुतवातिर कहते हैं, दरा हाले कि इनकी जो सनदें किताबों में मौजूद हैं उन्हें देखने के बाद इस बात में कोई शुबा बाकी नहीं रहता कि ये महज आहाद हैं, खबर वाहिद हैं, और खबर वाहिद भी कैसी जिनमें से अक्सर के रावी आइम्मा रिजाल के नज़दीक मजरूह। ऐसी दिलचस्प बहसें होती हैं, यानी बयान किया जाता है कि ये शख्स है जिसने किरात नकल की है, कुरान की किरात इस शख्स ने नकल की है। अच्छा, अब देखिए क्या लिखते हैं कि ये साहब किरात में इमाम है, हदीस में झूठे हैं, किरात में इमाम है हदीस में झूठे नहीं, हदीस में उनसे हदीस में मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, किरात को बयान कर रहे हैं। और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आप इनकी सनदें निकाल के देखते हैं तो वाकई है कि आदमी हैरान रह जाता है, कोई सनद भी इससे पाक नहीं। जिस रवायत की सनद को आप देखिए ये मालूम होगा कि उसके अंदर कोई झूठा है, कोई ज़ईफ़ है, कोई लपाटिया है, कोई हाफ़ज़े में कमज़ोर है, यानी किसी ना किसी पहलू से कोई ना कोई मजरूह रावी आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो बड़े बड़े आइम्मा किरात के शुमार होते हैं उनके ऊपर ये जरे मौजूद, इसमें आप लोगों को दिलचस्पी होगी तो मैं आपके सामने चंद मशहूर किरातें, यानी वो सात किरातें जो हमारे यहाँ बहुत पढ़ी जाती हैं, उनकी सनदें बयान कर दूँगा, बता दूँगा आपको। ये देखिए आइम्मा मुहद्दिसीन, खुद आइम्मा रिजाल, यानी मैं नहीं या कोई और नहीं बल्कि फ़न हदीस के उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं, और बिल्कुल ये जुमला लिखा होता है कि ये किरात में इमाम है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हदीस में झूठे, यानी रसूलुल्लाह की तरफ एक रवायत की नस्बत तो उनसे नहीं की जा सकती, अल्लाह की किताब वो बयान कर रहे हैं और वो हम नकल कर रहे हैं उनसे, ये सूरत है। इसलिए मैंने ये जुमला लिखा है कि ये महज अहाद हैं जिनमें से अक्सर के रावी आइम्मा रिजाल के नज़दीक मजरूह हैं, चुनाचे कुरान मुतवातिर तो एक तरफ, इन्हें कोई साहिब नज़र हदीस की हैसियत से भी आसानी के साथ कबूल नहीं कर सकता। यानी अगर किसी आदमी को हदीस के इलम में भी सेहत का अदम सेहत का शऊर है तो कैसे कबूल करेगा, हदीस तो कबूल नहीं करते हम, ज़ईफ़ करार दे देंगे ना, और अगर कोई झूठा है तो मौजू करार दे देंगे। यानी रावी के बारे में अगर ये मालूम हो जाए कि वो झूठा आदमी है तो फिर रवायत मौजू हो जाती, फिर उसकी रवायत किसी हाल में कबूल नहीं की जाती, लेकिन हम उसकी किरात को ना सिर्फ कबूल कर रहे हैं बल्कि मुतवातिर करार दे रहे हैं। ये इस मामले में तुरफा तमाशा है, और जिसका जी चाहे वो इस मामले में वैसे मौजूद है उसको देख सकता है क्या सूरत हाल है। हाँ, लेकिन मुहद्दिसीन ने फिर उन सालहीन की रवायतें कबूल तो नहीं की, उन्होंने तो उनमें से एक एक शख्स को बिल्कुल बराना कर दिया। यानी वो सूफिया और वो जाहिद आबिद लोग के जो रवायतें बड़े पैमाने पर घड़ रहे थे, तो मुहद्दिसीन ने उनकी सालहियत की शोहरत की वजह से उसको कबूल नहीं किया। यानी उन्होंने रवायतों की सनदों पर तहकीक की और उनकी रवायतें रद्द कर दी, इतने बड़े पैमाने पर रद्द की हैं। ये एक ज़माने में सूफिया ने ये प्रोपेगंडा किया कि ये जो आइम्मा रिजाल हैं ये देखिए कि ये हमारी गीबत करते हैं, یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے نا کہ یہ حضرت جو ہیں ان کے کردار کا یہ حال ہے، ان کی سیرت کا یہ حال ہے، یہ جھوٹی روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ غیبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوتے، ہماری عدم موجودگی میں۔ چنانچہ محدثین کو بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی اس پر کہ یہ غیبت نہیں ہے، یعنی اس پر بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے جر و نقد کے لیے، یعنی ہم کسی کا ذاتی عیب نہیں بیان کر رہے، وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی غیبت کرنے کا یا اس کا عیب بیان کرنے کا، لیکن وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت دے رہا ہوں، تو پھر آز راہ کرم وہ غیبت کرانے کے لیے تیار ہو جائے، پھر ہم کریں گے۔ یہ جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھائی عام آدمی جو ہے اس کی برائی بیان کرنا تو ایک بڑا جرم ہے، نہیں بیان کرنی چاہیے، لیڈروں کی غیبت واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو عالم کی حیثیت سے یا ایک آدمی اپنے آپ کو قوموں کے رہنما کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں رہتا کہ جناب دے دیکھیے میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت نہ کریں، یعنی یہ اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ گھر واپس چلیں گے، اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، عام آدمی کو کوئی نہیں چھیڑتا، عام آدمی کو اللہ نے یہ حفاظت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا۔ اصل میں جب قوم کی رہنمائی کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا ہے یا علم دین میں کوئی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو، جی اب میرے سیرت، میرا کردار، میری زندگی سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، اب جس کا جی چاہے اس کے اوپر تنقید کرے۔ تو یہ بات یہ ہے، یہ محض لطیفہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ چنانچہ محدثین نے صوفیہ کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا اور بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کیا، ان کے ہاں خود محدثین میں کے ہاں بڑے جو محدثین تھے جب یہ انہوں نے بحثیں کی ہیں تو وہ عام طور پر جب رجال کی بحث کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو از راہ تفنن تبا کہتے تھے کہ تال نکتب، آئیے تھوڑی سی غیبت کر لیں، یعنی تو کرنی ہوتی تھی ان کو، واجبات میں سے تھا، ان کا سارا کام اسی پر مبنی تھا۔ نوے فیصد اس طرح کی جو قصے بیان کیے جاتے ہیں بالکل غلط ہوتے ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ دعائے جمیلہ، دعائے گنج العرش، آپ اس کا کبھی مقدمہ پڑھیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے، بھائی وہ کہاں آئے؟ یعنی علم کی دنیا تو اس واقعے سے واقف نہیں ہے، محدثین اس سے واقف نہیں ہے، مورخین اس سے واقف نہیں ہے، ایک آدمی بیان کر دیتا ہے اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، کہ جبریل آئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی۔ اب موجودہ زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ موجودہ زمانے میں حدیث گھڑنی بہت مشکل ہو گئی ہے، کوئی اگر گھڑے بھی تو 14 صدیوں کی سند اس کو بنانی پڑتی ہے، تو ایک مشکل کام ہے۔ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار کے پاس سوئے ہوئے تھے، حضور خواب میں آئے، انہوں نے یہ بتا دیا۔ یعنی اب قصہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی، یہ شیخ احمد خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتا دیا، یہ قصہ کوئی عامیانہ نہیں ہے محض، آخر ہمارے جلیل القدر عالم ہیں شاہ ولی اللہ، انہوں نے 40 روایتیں اپنی خواب میں ہی روایت کی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں روایت کر رہا ہوں، موجود ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، اسی طرح کی قصہ ہے، ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے اعمال قرآنی، اگرچہ وہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے، وہ اصل میں ایک عراق کی عالم کی تصنیف ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے اوپر کچھ اضافے کیے ہیں، اور وہ بڑی مقبول ہے، یعنی جس کو دیکھیے اعمال قرآنی بہت مقبول ہے، کبھی اس کو پڑھیے، اس کے اندر صرف قرآن مجید کی آیتوں کے اعمال بیان کیے ہوئے ہیں، اس کا مقدمہ ہی بہت بصیرت افروز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میاں جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، مانگ جانتے ہیں نا، ہاں میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، بڑا زور لگاتی ہوں، تو انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے۔ اب آپ اہدنا الصراط المستقیم کو دیکھیے، اس دعا کی عظمت کو دیکھیے، وہ کہاں آئی ہے قرآن میں اس کو دیکھیے، اس میں مانگا کیا گیا ہے اس کو دیکھیے، ایک طرف یہ سب دیکھیے اور دوسری طرف، ہاں حالانکہ اس کا بڑا سادہ علاج یہ تھا کہ آئینہ خرید کے دے دیتے بی بی کو، اور یا اس کے میاں سے کہتے کہ تم نکال دیا کرو، لیکن یہ کہ اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے پڑھانے کی آخر کیا وجہ۔ لیکن وہ مقدمہ بڑی سنجیدگی سے انہوں نے لکھا ہے، उसके बाद जब उसने हदना सिरात मुस्तकीम पढ़ के मांग निकाली तो फिर हमेशा मांग सीधी निकलने लगी। अच्छा, उस किताब में आप आगे देखिए, उसमें ऐसे ऐसे अमल है कि कुरान की इस आयत को पढ़िए, फिर उल्लू को आप ज़बह कीजिए, फिर उसके खून के अंदर उसको डुबोइए, फिर कब्रिस्तान में जाके दफन कीजिए, उसके नतीजे में हम साइबर बाद हो जाएं। कभी आमाले कुरानी के कुछ मकामात ज़रा और आगे बढ़ जाइए, ये एक जगह एक बहस आनी है तो मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि इस मामले में हमारे जलील कदर बुज़ुर्गों ने कैसी कैसी चीज़ें जमा कर दी हैं। नहीं, ये कुछ जाहिज़ किया उसमें तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है कि बहुत बाद में लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बयान कर दी। तो ये जो सवाल हमारे दोस्त तारिक साहब ने उठाया था, मैं आखिर में उस पर अब तबसरा करना चाहता हूँ। यानी ये बात कि एक ये रवायत है हमारे पास, ये जिसका हमने ऊपर तजिया किया कि सैयदना उमर ने इस तरीके से सुना और हुजूर ने कहा कि इस तरह भी उतरा, और उसमें ये जिक्र हुआ है आखिर में कि कोई बात नहीं, ऐसे भी उतरा है, ऐसे भी उतरा है, कुरान 7 हरूफ पर उतरा है, ये हम पढ़ चुके हैं रवायत। और दूसरी जानिब ये किराते हैं, अब ये किराते हैं जिस तरह के मैंने अर्ज़ कर दिया आपको कि ये 7 नहीं है, ये तो असल में सैकड़ों की तादाद में, यानी 7 ये कैसे बनी है उसकी तारीख मैंने आपको बता दी है कि ये अबू बकर इब्न मुजाहिद ने इंतखाब करके, वो कोई भी इंतखाब कर सकते थे अपने इंतखाब से, ऐसा नहीं कि कोई उम्मत का वोट बैठा था, अपने इंतखाब से उन्होंने ये 7 किरातें किताब में नकल कर दी और उसके बाद लोगों में इसका रिवाज हो गया। तो आम तौर पर लोग ये समझते हैं, आम लोग ये समझते हैं कि ये 7 किरातें जो अबू बकर इब्न मुजाहिद ने रिवायत की हैं, ये असल में वो 7 किरातें हैं जिन पर कुरान उतरा था, यानी वो रवायत का ताल्लुक इससे जोड़ते हैं। लेकिन ये आम लोगों की बात है, ये आमियाना बात है, उलमा या जो जलीलुल कदर मुहक्किकीन है वो ऐसी बात नहीं कहते। जलीलुल कदर मुहक्किकीन के इस मामले में दो मज़हब हैं, एक वो जिसको बहुत अक्सरियत हासिल है और एक वो कि जो कलील गिरोह का मज़हब है। जिसको ज़्यादा अक्सरियत हासिल है वो ये है कि ये तो रवायत ठीक है कि कुरान 7 किरातों पर उतरा था, ये ठीक है, ये किरातें थीं क्या ये नहीं मालूम। यानी जलीलुल कदर मुहक्किकीन का जो मज़हब है वो ये है कि ये नहीं मालूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन सब किरातों पर कुरान पढ़ने की इजाज़त थी, सैयदना अबू बकर के ज़माने में भी इजाज़त थी, क्या थी ये नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी थी उन पर कुरान पढ़ने की इजाज़त थी। हज़रत उस्मान के इब्तदाई ज़माने में भी इसकी इजाज़त थी, लेकिन बाद में हज़रत उस्मान ने ये देखा कि ये तो बड़े फितने का बायस बन रही है चीज़, तो उन्होंने इनमें से 6 को ख़त्म कर दिया और 1 बाकी रहने। ये अमूमी मज़हब, ये अब ज़ाहिर है कि इस अमूमी मज़हब के ऊपर भी बड़े सवालात पैदा होते हैं। यानी कुरान मजीद अगर अल्लाह ताला ने 1 से ज़्यादा किरातों पर नाजिल किया था तो सैयदना उस्मान तो एक तरफ, रसूलुल्लाह सल्लम भी क्या हक़ रखते थे कि उनमें से किसी को मनसूख कर दें, और यहाँ तो ये है कि सैयदना उस्मान, अच्छा जिस फितने को रोकने के लिए सैयदना उस्मान ने ये इकदाम किया, क्या उसका खुदा को मालूम नहीं था, क्या रसूलुल्लाह सल्लम के इल्म में ये बात नहीं थी, तो ये मज़हब जो है ये इसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग जो हैं वो ये जान छुड़ा लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो अलग थी, वो ख़त्म हो गई, ये फिर अलग है मामला, ये तो असल में रवायत के तौर पर ये किरातें आ रही हैं। दूसरा जो कलील गिरोह है वो ये कहता है कि नहीं असल में ये जो रवायत है, इस रवायत में ये बात जो बयान की गई है ये इन्हीं किरातों में कहीं पाई जाती है, यानी 100 हैं या 200 हैं तो ये इन्हीं किरातों में पाई जाती है। चुनाचे हमारे मौजूदा ज़माने में मौलाना तकी उस्मानी साहब ने उलूमुल कुरान पर जो किताब लिखी तो उसमें इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो सैकड़ों किरातें हैं इनके इख्तलाफात को अगर जमा किया जाए तो वो 7 किस्म के बन जाते हैं गालिबन ये बात के लिए, मिसाल के तौर पर। तो इस मसले को हल करने की इस तरह की कोशिशें लोगों ने की हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुहक्किकीन ये कहते हैं कि वो 7 जो बयान की गई हैं वो बैने ही ये 7 हैं, ये आमियाना बात है। आम तौर पर बाद वो लोग जो इस इल्म से, इस फ़न से, इसकी तारीख से वाकिफ़ नहीं है वो बाज़ औक़ात ऐसी बात कह देते हैं, लेकिन ये बात ऐसे नहीं। यानी दो नुक्ता नज़र मौजूद हैं, एक ये कि वो ख़त्म हो गई और ये अलग चीज़ है, और दूसरा ये नुक्ता नज़र जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी ना किसी तरीके से उन 7 को भी यहीं इनमें से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा हैं तो सैकड़ों लेकिन इन सब को अगर हम जमा करें तो इनमें इख्तलाफात जो हैं वो 7 किस्म के हैं। 7 किस्म के इख्तलाफात मतलब यह है कि इराब का इख्तलाफ है अगर तो ये एक इख्तलाफ हो गया, اگر کسی لفظ کی صرف کا اختلاف ہے یعنی لفظ بنا ہوا کیسے ہے تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا. تو یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اس کی کیا حقیقت آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بھی تبصرہ کر دوں گا. یعنی یہ اس سے زیادہ بے معنی بات ہے جو کچھ اب تک کہا گیا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ توجیہ کر دیں. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ نہ اس روایت کا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو کسی لحاظ سے بھی قرآن مجید کے مطابق کہا جا سکے, عقل عام کے مطابق کہا جا سکے, یا قرآن کی مسلمہ تاریخ کے مطابق کہا جا سکے. تو ایک روایت اگر قرآن کے خلاف ہے, عقل عام کے خلاف ہے, اور خبر واحد ہے, قرآن کے خلاف ہے, عقل عام کے خلاف ہے, مسلمانوں کی قرآن کے بارے میں مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیوں وقت ضائع کیا جائے اس کے اوپر؟ اس کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے. بہت سی محدثین نے پہلے الگ کی ہیں, اس کو بھی الگ کر دینا چاہیے. اور دوسری جو چیز میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن متواتر اللہ کا بہت شکر ہے, اور وہ قرآن جس کو اجماع حاصل ہے امت کا, وہ امت میں بغیر کسی نزاع کے موجود ہمارے پاس موجود. اس کے مقابل میں روایتیں جو کچھ بھی ہیں اور قراءتیں جو کچھ بھی ہیں, خواہ وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہوں, خواہ وہ مصائف عثمانی کے مطابق ہوں, خواہ وہ جیسی بھی ہوں, بہرحال وہ اخبار احاد, یعنی سندوں کا بھی کیا حال ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو ان میں سے کسی ایک کی دو کی سند ٹھیک ہی ہے, جو کچھ بھی ہیں اخبار احاد ہیں, اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ قرآن صرف وہ ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے, اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی, یعنی یہ بات جو ہے ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی. ان کے جو علماء محققین ہیں ان کی بات لینی چاہیے نا. عامۃ الناس میں تو بہت سی باتیں رائج ہوتی ہیں, لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے محقق علماء میں سے کسی نے یہ بات لینی. تو یہ جناب قراءتوں کا افسانہ یہ ہے, یعنی اس کی نوعیت یہ ہے. ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اختلاف قراءت کی, یہ بھی بہر الحدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے, اور جو قراءتیں لوگوں میں رائج ہیں وہ بھی مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں. لیکن بہت اطمینان کے ساتھ, بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ یہ بات اس امت پر واضح کرنی چاہیے کہ قرآن اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا, اور قرآن کی اس قراءت کے علاوہ باقی سب اخبار احاد ہیں. ایک چیز خلجان پیدا کرتی تھی, اور وہ یہ کہ مغرب میں جو قرآن رائج ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تاریخ معلوم ہے جب اس کو رائج کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ بات بھی بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک خبر واحد تھی جس کو ایک زمانے میں حکومت نے لوگوں میں رائج کر دیا, اور اس علاقے میں وہ رائج ہو بھی گئی. لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زمانے میں اس کی قراءت رائج کی گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کی تلاوت کر رہے ہیں, اور یہی قرآن ہے اور یہی اس کی قراءت ہے کہ جس قراءت کو پھر قرآن ماننا چاہیے. چنانچہ یہ جو آخر میں معیار بیان کیا گیا ہے, میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی یہ معیار اصل میں حدیث کی سند کے معاملے میں جو اعتماد پیدا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کی ہے اسی سے وجود پذیر ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کا ماخذ وہی ہے. اس لیے کہ اگر ان اخبار احاد کو ترک کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر بھی زد پڑتی ہے, تو لوگوں نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر لیا ہوگا, چلیں تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی مصالحت کر لی جائے, ورنہ یہ سب اخبار احاد. یعنی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک قرآن متواتر ہے, اور ایک اخبار احاد کی بنیاد پر اس کے بعض آیات کی قراءتیں روایت کی جاتی ہیں. وہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن وہ اخبار احاد ہیں, حدیث کے پائے کی بھی نہیں, وجہ یہ کہ ان کو قرآن مانا جائے. اب اگر یہ بحث جو ہے یہ شافی ہے, اس پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو پہلا سوال قرآن کے میزان اور فرقان ہونے پر عائد کیا گیا تھا, پہلا سوال اعتراض وارد ہوا تھا نا کہ قرآن کی تو قراءتوں میں اختلافات ہیں, تو وہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کی قراءتوں کے بارے میں کوئی بحث باقی نہیں رہتی. اس کے بعد جناب اب دیکھیے کہ جو دوسری بحث ہے, وقت کتنا باقی ہے؟ 3 منٹ ہیں. تو پھر میرا خیال یہ کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں, اس بحث کو پھر ہم اگلی نشست. جی, اس وقت کسی مصحف کے بارے میں یہ بات اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سیدنا عثمان کے. سب سے پرانے نسخے کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں جو ہے وہ اصلی ہے, کچھ کہتے ہیں مراکش میں جو ہے وہ اصلی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جو تاشکند میں تھا, لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. جی وہی نہیں موجود. کیا مطلب ہوگا, تو ہمارے پاس ہے, تو ہمارے پاس موجود ہے, وہی قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے. فرقات کی صورت میں فرق ہے, صورت میں فرق ہے, وہ صورت میں فرق ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو یہ نا کہ مثلا پیش لکھنے کا ایک طریقہ ایک جگہ رائج ہے, دوسری جگہ پیش لکھنے کا دوسرا طریقہ رائج ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو خط بھی بدلتے رہیں گے. یعنی قرآن ہم جو ہے وہ نستعلیق میں بھی لکھ سکتے ہیں, قرآن مجید ہم خط نسخ میں بھی لکھ سکتے ہیں, قرآن مجید کسی اور خط میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی ڈائلیکٹس کا فرق جو ہے وہ اگر ڈائلیکٹس کا اگر فرق ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا, پھر اور کیا چاہیے تھا, ہے نہیں نا. وہ میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں, اس کو سن لیجیے پیچھے. نہیں ایسا نہیں, گزارش سن لیجیے. نہیں ایسا نہیں, گزارش سن لیجیے. اس زمانے میں پہلی مرتبہ وہ قرآن چھاپا گیا ہے جس میں ایسا لکھا گیا. تو اس زمانے میں تو انہوں نے ورش کی قرآت پر بھی چھاپ دی. ایسا نہیں, جو قرآن امت کے ہاتھ میں ہمیشہ سے موجود, اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو معنی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی پہلی بار ابھی لکھا گیا, ابھی لکھا گیا. پانچ سات سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ قرآن آئے ہیں وہاں سے جن میں مجمع الفاظ, اس میں جو قرآن چھپا ہے اس میں ہے. جمعرات کی تو اعلان پہلے ہو چکا ہے نا, یعنی کیونکہ یہ اب خالص علمی نشست ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ ان کو یعنی متنوع سوالات کرنے ہوتے تھے, تو درس قرآن میں موقع تھا اس کا, تو اس کے لیے میں نے جمعرات کا دن خاص کر دیا. جمعرات کو مغرب کے بعد اسی جگہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. مغرب سے عشاء تک وہ نشست ہوتی ہے, کوئی گھنٹے سوا کے قریب, عام جنرل کوسچنس, جنرل کوسچنس, تو وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, جنرل کوسچنس بھی ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت اس میں دین سے ہٹ کر بھی, یعنی بے دینی کی نہیں. کوئی ایسا فرق, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے تلفظ کا مسئلہ ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تلفظ کے معاملے میں دو طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہوتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے اہل زبان, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کام بھی آپ سے پہلے نہیں ہوا تھا, یہ بھی پہلی بار ہوا. موجودہ زمانے میں چونکہ لوگ عام طور پر اس میں قائل ہو گئے ہیں تو انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا. جناب, وآخر الدعوان الحمدللہ.